ਉੱਪਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਗਹਿਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਨਕੜ ਦਾਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਭਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣਤਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਵਸ, ਤੈਂ ਪਾਪਨ ਤੇ ਪੁਨ ਪਾਪ ਲਜਾਈ। ਪਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਕਲੇਸ਼, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਜਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪ, ਬਈ ਕੰਬਖਤ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਪਾਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਵਸ, ਤੈਂ ਪਾਪਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਲਜਾਈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਕਸਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਗਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਪਤਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਨਾ ਥੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਖਬਰ, ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਐਬੋ ਹੁਨਰ, ਜਬ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਪੇ ਪੜੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋ ਜਹਾਂ ਮੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਹਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਿਸ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਸ ਪਈਆਂ, और उन्होंने सवारन के सुधारन का ख्याल आ गया। भाई गुरदास जी ने एक लंबी चौड़ी गाथा लिखी है पौड़ी दे, मैं सिर्फ एक मिनट बयान करा। कहते ने दुर्योधन श्री कृष्ण के कोल आए, कह लगे साडा फैसला कराओ। कृष्ण कह लगे मैं यही सोच रहा कि फैसला मैं करना है थोड़ा, पर तू इंज कर हस्तनापुर आप जा, जड़ा सब तो नेक बंदा होवे चंगा बंदा होवे उन्हूं लभ के लिया। ये भाई गुरदास जी ने कथा लिखी है पौड़ी दे। युधिष्ठर ने भी बेनती की भी सानू प्रवान है तुसी फैसला कर दो। तो श्री कृष्ण कह लगे युधिष्ठर न, पर तू भी एक काम कर, इस हस्तनापुर दे जड़ा सब तो भैड़ा होवे सब तो बुरा होवे सब तो दुष्ट होवे उसनू लभ के लिया। कहने चले गए। दिन ढलदियां दुर्योधन वापस आया ते कला, ते कृष्ण कहन लगे तेनू मैं कहा सी कोई नेक बंदा लभ के लिया, कोई शराफत दा मुजस्मा, कोई भले मानसी दी मूर्ति, कोई निर्माणता दी मूर्ति, कोई दूर दृष्ट, कोई सतपुरश लभ के लिया नेक बंदा। दुर्योधन कहता है मैं सारे हस्तनापुर दे च निगाह मारी है, कम वक्त सारियां च कुछ ना कुछ खामियां ने, उन्हां नालों तो मैं ही चंगा थोड़े कोल खड़ा, दसो की फैसला करना ने कर, मैं ही ठीक उन्हां सारियां नालों तो मैं ही ठीक हाँ। कहने जब रात पै गई तो थकिया हारा युधिष्ठर भी आया, यह भी कल्ला आया। तो कृष्ण कह लगे तेनू कहा सी बुरा मनुख लग के लिया तू नहीं ले आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कह लगा थोड़े सामने ही खड़ा है, जे बुरा ही मनुख चाहिए तो मैं खड़ा, मैं देखे है सारे मैथों चंगे ने, तो तुसी कहा सी सब तो बुरा, तो इस शहर का तो फिर मैं ही सब तो बुरा मनुख। हुण ऐसा नहीं सी कि हस्तनापुर दे बुरे नहीं सन ते भले नहीं सन, सब कुछ सन, देखण देखण दा ढंग है, एक दूजियां दे उपर 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 वेखदा है, तो उपर उपर ते हर एक दे गुण पैन है, एक दूजियां दे बहुत गहरा वेखदा है, अपने च उपर उपर वेखदा है। तो हर मनुख दे उपर उपर ते चंगियाईयां ने, हर बंदे ने उपर उपर ते चुकना चुपड़ी कीती होई है, लेपा पोची कीती होई है, शराफत दी भले मानसी दी नेकी दी हर एक ने उपर जो है पेंट किया, इस तरह की चित्रकारी की थी हर एक ने। मैं अर्ज करा जिड़ा मनुख थोड़ा जिहा अंतरमुखी होंदा है वो हैरान हो जाता है इनिया बुराइयां मेरे, इस वास्ते अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा है, मनुख अपने तो भजदा है दूर हटता है। ये पुत्र नाल बैठ सकता है, मित्र नाल बैठ सकता है, पत्नी नाल बैठ सकता है, पति नाल बैठ सकती है, ये पड़ोसियों नाल भी बैठ सकते हैं, कुछ नहीं तो कोई किताब चाहिए, अखबार चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, मनुख अपने आप नाल नहीं बैठ सकता। एक फकीर एक नदी तट पर बैठा सी कल्ला, उसके दोस्त ने देखा भी मेरा मित्र कल्ला बैठा है, तो मैं चल के इसनों साथ देवा, कल्लापन मनुख नूं अखड़दा है। तो मैं जेल दे च भी देखा है सब तो करड़ी सजा जिसनों देनी होवे ना, कहिंदे ने इसनों कल्ला रखो, ये दूजा नहीं होना, आपे औखा होगा, आपे बेचैन होगा, आपे मानसिक तौर पर बेचैन हो, मन दे सारिया ही बुराइया ने, तो कला बंदा तो फिर मन के तल से जीवन लग पाएगा, थोड़ा जहाँ अंतरमुखी होगा, जैसे अंतरमुखी होगा फिक्र चिंता दुख तनाव। सब तो वड्डी सजा भारत में मनते ने कला रखो, चार दिन ठीक हो जाएगा, आखेगा मैं सारे नाल रखो। तो कहने तो मुराद तनहाई नूं एक बोझ मनिया गया, दुख मनिया गया। उस फकीर ने देखा भाई मेरा मित्र कल्ला बैठा है, चल के मैं इसनों साथ दिया, वो चला गया। जैसे उस फकीर दे कोल बैठता है तो कहता है फकीर साई तुसी कल्ले बैठे से मैं थोड़ा साथ देने लई आ गया। उसने आखे मित्रा तेनू किसने कह दिता मैं कल्ला बैठा सी, मैं ते अपने आप दे नाल बैठा सी, हुण तू आया मैनू कल्ला कर छड़े, मैनू अपने नालों तोड़ दिता। धर्म की यह साधना है, पहले चरण में अपने आप दे नाल बैठ। अगर तू अपने आप दे नाल बैठन दे सफल हो गया तो एक दिन गुरु नाल बैठेगा, रब नाल बैठेगा। पहले तो तेरा अपना आप है, पर जे तू अपने आप नाल बैठन दे सफल नहीं होया तो गुरु कोल नहीं बैठ सकेगा। सारी दुनिया गुरुद्वारे आउंदी, कौन गुरु कोल बैठता? इस चक्कर च ना पैना, गुस्ताखी माफ, हाजरी भरनी होर गल है, गुरु की हजूरी में चले जाना होर गल है। हाजरी तो हजारा भर लेंगे, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। गुरु की हजूरी च कोई कोई जाता है, किसी भी सुरत शब्द नाल जुड़ती है तो आनंद लेंदी होवे, रस लेंदी होवे, नहीं तो हजूरी विच कोई नहीं जाता। सब बंदे है अपने तो दूर भजन की कोशिश करते हैं, गुरु कोल बैठने वास्ते पहले अपने नाल बैठना है। और गुरुद्वारे बैठिया बैठिया जिसनों अपनिया खामियां दिसन लग पैन, अपनिया कमजोरियां दिसन लग पैन, एक गल स्पष्ट हो गई कि इसनों अपने आप का देखना आ गया, जांच आ गई है, ढंग आ गया, तरीका आ गया, तौर तरीका आ गया। धर्म की जिहड़ी मूल साधना है अपने आप नूं वेखना, ते देख जिथे जिथे तेरी होंद बेमर्यादा है, देखें किधरे तेरा हासा बेमर्यादा ना होवे। मुख्तसर मैं अर्ज करा, मनुख हसता है दूजियां दी कमजोरी ते, मनुख रोंदा है अपनी मजबूरी ते। बगौर मुताला करना, हस पैंदे ने संत भी अपनी कमजोरी ते, रो पैंदे ने संत भी दूजियां दी मजबूरी ते। रोंदे रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, दूजियां दी मजबूरी देख के संत रो पैंदा है। दूजे इतने मजबूर ने, इतने दुखी ने, इतने बेजार ने, हस पैंदा है अपनी कमजोरी ते। धन गुरु रामदास जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक, हर जन गुण गावत हसया। गुरु रामदास हरी दा जन प्रभु दे गुण गांदियां गांदियां हस पिया, हर जन गुण गावत हसया। क्यों? हासे दी की लोड़ पै गई, अपनियां कमजोरियां दिखाई दित्तियां, ते कमजोरियां ते हासा आवेगा, चाहे दूजे दियां ने ते चाहे अपनियां ने। जो अपनियां कमजोरियां ते हस पिया वह संत है, भगत है, ते जो दूजियां दी कमजोरियां ते हसदा पिया संसारी और की है, ते बारमुखी बंदा है। रंग रोवे रोंदा है दूजियां दी मजबूरी ते। जद मेरे कोल कोई पुछदा है कि गुरु नानक ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया, 12-12 साल दी एक एक उदासी, इतने पेंडे दी की लोड़ सी, एक कोई जवाब निकलता है गुरु नानक दुखी सी। तर्क खड़ी हो जाती है कि जिहड़ा आप दुखी सी वो सुख किस तरह दे सकता है। दरअसल ये दुख दूजियां दा सी, अपना नहीं सी, दूजियां दा सी। मैं इस दे उत्ते एक उदाहरण दें, बच्चा बीमार है, रात दा वक्त है और बच्चा बेचैन है, हुण मां भी बेचैन है, बच्चा दुखी है, हुण मां भी दुखी है, बच्चे नूं नींद नहीं आ रही, तड़प रहा है, मां नूं भी नींद नहीं आ रही। मां नूं आखिया जा सकता है तू आराम नाल सौ जा, ताप ते बच्चे नूं चढ़िया, तैनूं थोड़ी चढ़िया। पर नहीं, अगर किसी मनोविज्ञानिक कोल पुछोगे जिहड़ा ताप बच्चे दे तन नूं चढ़िया उही ताप मां दे मन नूं चढ़े। बच्चा तन करके दुखी है, मां मन करके दुखी है। बच्चे दी सारी पीड़ा, बच्चे दा सारा दुख उसनों उसने अपने मन दे च वसा लिया है, तो विचारी तड़प रही है। एक बच्चे का दुख जब मां ने अपने हृदय दे च वसाया तो सारी रात सौ नहीं सकी, तड़पती रही। तो सारी दुनिया का दुख दर्द गम जिस गुरु नानक के हृदय से वह आराम नाल सुल्तानपुर रेंदे ते किस तरह रेंदे, वो आराम नाल तलवंडी रेंदे ते किस तरह रेंदे। जगत का गम लई फिरदा सी, जगत का दर्द लई फिरदा सी। इस वास्ते गुरु नानक दे नाल शब्द जुड़ गए, दर्दी दाता, लोगों का दर्द वंडाण वाला। लोकी खुशियां वंडाण वास्ते ते मिल जाणगे, दर्द कोई नहीं वंडाएगा। यह भी मैं अर्ज करते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने, सुख में बहु संगी भए, दुख में संग ना कोय। सुख है तो सुख वंडाण वास्ते ते बहुत सारे आ जाणगे, बड़े संगी साथी लभण गए, बड़े मित्र लभण गए, पर जे तू पीड़ा दे चोया, जब तू दुख दे चोया, जब तू विपता दे चोया, चिराग लेके भी साथी लभेगा नहीं, तेरा दर्द कौन मंडाए, तेरे दुख का कौन भाईवाल बने, तेरी मुसीबत ते पीड़ा का कौन भाईवाल बने। इस वास्ते दरबार अकबरी का एक बड़ा कीमती रतन नौ रतना दे चा जनाब कवि रहे, एक बड़ी कीमती गल कहिंदा है, रहे मन विपता हूं भली, कहिंदा मुसीबत भी चंगी है, पीड़ा भी चंगी है, विपता भी चंगी है, रहे मन विपता हूं भली, जो थोड़े दिन होए होवे थोड़े दिन आई, कुछ दिन आए, ये नहीं कि विपता घर विच आए तो निकलण का नाम ही ना लवे। कहिंदा विपता चंगी है, बशरते थोड़े दिन लई आवे, रही मन विपता हूं भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित सब जगत में जान परत सब कोए। फिर पता चल जाता है हितू कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, फौरन पता चल जाता है। वो विपता दस देंदी है, वो अपता दस देंदी है, वो मुसीबत दस देंदी है। खुशी रहते खुशियां वंडाण वास्ते सारा जमाना आ जाएगा, दुख कोई नहीं वंडांदा। दुख वंडाण वास्ते निकले धन गुरु नानक, किधरे कोड़ी दा दुख वंडांदे ने, किधरे अग्ञानियां दा दुख वंडांदे ने, किधरे मानसिक तल ते जो रोगी ने उन्हां दा दुख वंडांदे ने, नौ खंड पृथ्वी दे भ्रमण करदे ने। इह ऐसा वैद सी जो बिना बुलाया पहुंचदा सी ते बिना फीस ते पहुंचदा सी, इतना दर्द इतनी पीड़ा, दर्दी दादा देखिया हंकार दे रोग विच पीड़ित ने इस सुमेर दे जोगी तो पहुंच गए सुमेर पर्वत ते, देखिया अज्ञान दे विच पीड़ित ने ए मक्के दे हाजी ए बदू सतगुरु उत्थे भी पहुंच गए, देखिया शरीरिक तल ते एक रोगी ए कोड़ी तो उहदी जोगी च भी पहुंच गए। भरम वहम तो मात दा बोझ चुकी फिरदे ने ब्राह्मण हरिद्वार दे ए बनारस दे सतगुरु उत्थे भी पहुंच गए। और एक बैठा है लोगों नूं ठगदा पिया है, धर्म दा जामा लेके पहन के और धर्म दे नां ते ठगी जांदा है, लोगों नूं पीड़ित करी जांदा है, आप बेचैन होई जांदा है, सतगुरु उस कोल भी पहुंच गए। ऐसा दर्दी दाता मैं अर्ज करा, सुख दुनिया वंडा सकती है, दुख किसी ने नहीं वंडाणा। ते हुण मैं अर्ज करा, संत हसदा है अपनी मजबूरी ते, रोंदा है दूजियां दी मजबूरी ते, संत हसदा है अपनी कमजोरी ते, अपने अवगुणां ते, संत रो पैंदा है दूजे दे दुखां ते, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, उहदी खामोशी विच भी कोई रस है। जे चुप भी बैठा है तो वाकई चुप बैठा है, ये नहीं कि उहदे अंदर नाजायज पुरने पे चल दे, समाधि लीन है, एकाग्र बैठा है, रो रहा है किसे मस्ती च, हस रहा है किसे रंग विच, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना है। नंदलाल ने ते गल बड़ी गजब दी कह दी है, वो कहिंदे ने शाखे उम्मीद आशिक, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनन भगत और जिसते कलगीधर पातशाह बड़ा माण करते सन, शाहे उम्मीद आशिक हरगिस समर न गीरत, ऐ प्रेमी ऐ रब दे मार्ग दे पांदी, ऐ प्रेमी तू उम्मीद दा बूटा लाया, आशा दा बूटा लाया, इनू मिलाप दा फल नहीं लगेगा, हरगिस समर न गीरत, समर कहिंदे ने फल नू, हरगिस फलीभूत नहीं होवेगा, क्यों, तू इस उम्मीद दे बूटे नो, इस आशा दे बूटे नो सिंचिया ते है नहीं, पानी ते पाया ही नहीं, तू पानी की पाई है, तू उम्मीद दा बूटा लाया रब मिले, तू आशा दा बूटा लाया गुरु नाल जुड़ा, ए बूटा फलीभूत नहीं होवेगा। शाखे उम्मीद आशिक हर गिस समर न गीरद अज आबे अशके मैजगां ता सबज तर ना बाशद, जितने चिर तक अपनी अखां दा जल इस उम्मीद दे बूटे दे च नहीं पावेगा, रब्बी मिलाप दा फल नहीं लगन लगा, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਿਰਸ ਕਰਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਨਣਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਸਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਚੰਚਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਚੰਚਲ, ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਚ, ਉਸਦੀ ਤਕਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਯਾਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਬੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਖਾਜ। ਨਾ ਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਹਯਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਗਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਸ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੜਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੀ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਰਪਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਦਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ। ਅਗਰ ਜੀਵਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 98 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏ, 99 ਹੋ ਜਾਏ, 100 ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਗਰਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ 98 ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ 98 ਰਹੇਗੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਦਪਰੇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬੇਸੰਜਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੇਸੰਜਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੇਗਾ। जो जिसम के तल से उखड़िया होया कहिंदे हर तल से उखड़ेगा, हर थां ते मर्यादा नूं तोड़ेगा, हर थां मर्यादा नूं परे सुटेगा। इस तरह के बंदे नूं कहिंदे ने ये परमात्मा के मार्ग का पांधी नहीं ते धर्मखंडी भी नहीं है। राती रुती थिती वार पाउण पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। साहब कहते हर एक दे कर्मा दी विचार होगी, कर्म मर्यादा दे सन कि बेमर्यादा, खाना पीना बेमर्यादा है रोग पैदा हो जाएंगे। और आप सुन के हैरान हो गए, आयुर्वेद आचार्य कहते ने 90% रोग आहारक ने, जो साढ़े इस रोग पैदा होते ने 90% आहारक ने, खाण पीण की बदपरेजी तो ने, 10% जद्दी हो सकते ने खानदानी, 10% होर कुछ कारण हो सकते ने, 90% रोग आहारक ने, मनुख अपने शरीर के अनुकूल नहीं चलता। और उन्होंने बकायदा एक नियम भी दसे है, वात पित कफ, वो कहते जब बंदे नूं ताप चढ़िया है वो जिहड़े 90% रोग मन्ने ने, जब मनुख दुखी होया है पीड़ित होया है रोगी होया है वह कहिंदा इन्हां कारणां करके होवेगा। वै धनंतर हकीम लुकमान जिन्हां ने आयुर्वेद दे उत्ते बहुत वड्डा काम कीता है, अज तो हजारां साल पहले जो जड़ी बूटियां दा उन्होंने सुभा दसिया है अजोकी साइंस उस तों उल्ट नहीं दस सकी, उही है। यह भी मैरज करते हैं वात पित्त कफ, वो कहने जिस दे शरीर दे पित्त प्रधान हो गई है, पित्त गर्मी बढ़ गई है, वधा दिता है उसने मादा, या गर्मी प्रधान शरीर है पित्त प्रधान उसका शरीर है, ऐसे बंदे नूं वो चीजा खाण तो संकोच करना चाहिए जिन्हां दी तासीर गर्म है, नहीं तो पित्त बढ़ जाएगी और इस पिस तो अनेक रोग हो सकते हैं, पीलिया हो सकता है और इस तरह के होर सैकड़े रोग हो सकते हैं। कफ पानी प्रधान, ऐसा मनुख उन्हां चीजां खावे जिन्हां की तासीर ही ठंडी है, बड़ी ठंडी है, अगर खाएगा जोड़ दुखणगे, मोंडे टुटणगे, होर हजारां तरह दी बीमारियां पैदा होणगियां। वात पित्त कफ वात वायु, ते जेदे शरीर विच वायु प्रधान है वह बादी चीजा खावे होर वायु वधेगी ते वध्या इहदा शरीर निडाल हो जाएगा। वो कहिंदे सन आयुर्वेद आचार्य भी पहले अपने शरीर के नियम नूं देख ले, शरीर विच कि चीज प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, वायु प्रधान है, यह भी एक अपने आप विच विज्ञान है, सोच ते समझ है। इस वास्ते साहब कहिंदे ने कि जमीन ते मैं देखदा रातां ने रुत्तां ने थित है वार सब मर्यादा दे चल रहे ने, दरिया मर्यादा दे चल रहे ने, सागर मर्यादा दे चे, सूरज चंद तारे मर्यादा दे चने, जमीन मर्यादा दे घूम रही है, तू बेमर्यादा, तू मर्यादा दे जी, तेरा सब कुछ बेमर्यादा, तेरा उठना बेमर्यादा, तेरा सोना बेमर्यादा, तेरा खाना बेमर्यादा, तेरा पहनना बेमर्यादा, तेरा हसना ते रोना बेमर्यादा, सब कुछ मर्यादा दे चाहिए। ये धरती धर्म कमाण वास्ते है, ये धरती इस वास्ते है कि तू मर्यादा दे च रहे, धरती खुद मर्यादा दे च है ते तू धरती ते चल रहे है मर्यादा दे चल, धरती खुद मर्यादा दे च घूम रही है इस वास्ते तू धरती ते जीवना है ते मर्यादा दे च जी। महापुरशां ने बैरूनी कुछ मर्यादावां बनाईया ने, धर्म खंड इस्लाम ने शरा बना दिती, हिंदू धर्म ने कर्म कांड बना दिता, सतगुरां ने भी साडे वास्ते धार्मिक मर्यादा बना दिती, शरीर की मर्यादा बना दिती, समाज की मर्यादा बना दिती, जिहड़ा तोड़े वो ते जे पहले पड़ाव ते भी नहीं है। तो मैं एक अर्ज कर दिया, कलगीधर पिता ने कह दिता सी कि मैं आत्मा करके ग्रंथ देचा गुरु ग्रंथ, और मैं शरीर करके गुरु पंथ देचा गुरु पंथ, पंथ दे दर्शन मेरी काया दे दर्शन, ग्रंथ दे दर्शन मेरी आत्मा दे दर्शन, शब्द नूं जो सुनेगा वो मेरी आत्मा नाल जुड़ेगा, और जो संगत दे दर्शन करेगा, पंगत दे दर्शन करेगा, पंथ दे दर्शन करेगा वो मेरी काया दे दर्शन करेगा। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो पले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। सर्वलोक ग्रंथ मैं काया करके पंथ देखा। अगर कोई थानू कहे ना कि देहधारी गुरु तो बिना गल नहीं बनती, कह दिता करो पंथ साड़ी देहधारी गुरु है, असी पंथ दे दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन, संगत दे दर्शन विच संगत हर प्रभु वसे जी। इसनू मैं फिर खुलासे दे जो है लवांगा। तो पंथ की अपनी एक अहमियत है, और जब पंथ गुरु है तो सतगुरु ने अख्तियारात दे दिते सन पंजां नूं। अज तो 50-60 साल पहले 50-60 बंदियां ने साल डेढ़ साल मेहनत करके सिख सिंह की मर्यादा तरतीब दिती लिखी, जिन्हों खरड़ा कहते हैं अकाल तख्त का, जिदे संतां दे भी दस्खत ने, गुणी ज्ञानियां दे भी दस्खत ने, उस वक्त दे आलम विद्वान मुदब्बर सब दे साइन ने। और एक साल लगातार मेहनत की गई, विचार वटांदरा किया गया, तो यह नतीजा निकले। जैसे ट्रैफिक रूल कोई एक दो ही बनाते हो गए, पर पालना तो सारा देश करता ना, करोड़ों बंदे ट्रैफिक रूल थोड़ी बनाते हैं, करोड़ों बंदे ट्रैफिक रूल मनते हैं, एक दो ट्रैफिक रूल बनाते हैं, दो चार ट्रैफिक रूल बनाते हैं, जना खणा नहीं बनाता, जने खणे नूं मनना पैंदा जो ट्रैफिक रूल बन गए। इस तरह जना खणा पंथ की मर्यादा नहीं बनाता, तो जने खणे नूं कोई हक नहीं, यह भी मैं अर्ज करते हैं, किसी नूं कोई हक नहीं। मर्यादा नूं मनना साडा फर्ज है, मर्यादा बनावनी साडा हक नहीं है, पंथ का हक है। और आखिरी फैसला अकाल तख्त का, ये चार कुंटां विच उस वक्त जो सतगुरां ने तख्त बनाए सन पुराने पंथ ने प्रमाणी, ये तख्त एक दक्षिण विच हजूर साहब, एक पूर्ब विच पटना साहब, इस तरह उत्तर विच आनंदपुर साहब सी प्राचीन, और दक्षिण विच लहिंदी तरफ पै जांदा सी अकाल तख्त। जे किधरे झगड़ा है आपस दे सिखां दा, कर्नाटक, तमिल, केरला, महाराष्ट्र, मध्य भारत तक जाके निपटा लो हजूर साहब, बंगाल है, असम है, बिहार है, कोई आपस में मतभेद ने, निपटा लो पटना साहब। पर जे किधर तख्तों का भी आपस में मतभेद है तो फिर निपटाओ अकाल तख्त, आखिरी फैसला अकाल तख्त का, जे तख्त भी आपस में मतभेद। बदकिस्मती साडा बहुत कुछ हिला दिता गया है, पता किसी कौम नूं खेरू खेरू करना होवे तो उसका जिहड़ा इष्ट है उसके इष्ट के मुकाबले उत्ते कुछ इष्ट होर पैदा कर दो, तो गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले उत्ते 10-20 गुरु होर पैदा कर दिते गए हैं। कोई निरंकारी है, कोई नामधारी है, कोई राधा स्वामी है, कोई किले वाले ने, तो कोई होर 10-20 ने, भावें अपने आप को कहें थे वो संत ने, पर खिमा करनी गुरु ने, जिस ढंग नाल चलते पैने, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी मर्यादा बना ली, वो कहने साड़ी डेरे की यह मर्यादा, साड़ी यह मर्यादा, तो पूछा जा सकता है फिर पंथ की की मर्यादा, थोड़ी ये मर्यादा दूसरे की हो है, तीसरे की हो है, चौथे की हो है। तो जब कई दफा कोई सिख रोज गुरुद्वारे आने वाले भी कहने नहीं जी असी तो अपने ढंग की मर्यादा चलानी है, तो फिर राधा स्वामियों को बंडन की कोई लड़ ही नहीं, निरंकारियों को भंडन की कोई लड़ नहीं, शायद साढ़े नालों ज्यादा बाणी पढ़ते हैं, सिर्फ साड़ी मर्यादा ही तो नहीं मनते, कहने नहीं मनते। ये मैं सिर्फ पंथक दर्द को मुख रख के थोड़े सामने रख रहा गल, कोई ईरखा वस हो के नहीं, इतनी मैं अर्ज करा। एक गुरु के मुकाबले देते 10-20 गुरु खड़े कर दते गए कौम खेरू खेरू, और जिहड़ी कौम धार्मिक तौर पर एक ना हो उसनू सियासी तौर पर एक करना बड़ा औखा है, बहुत कठिन है। गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले थे कुछ गुरु खड़े कर दिते गए, और इस तरह के गुरुआ ने कभी पंथ का साथ नहीं दिता, यह भी मैं अर्ज करते हैं, कभी नहीं दिता, इतिहास सामने। मर्यादा खेरू खेरू करो, बिल्कुल डिवाइड कर दो, तकसीम कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। अज एक कौम धार्मिक तौर पर भी वंडी हुई है, सियासी तौर पर भी वंडी हुई है, दूरदृष्ट चिंता तुरने की बनेगा, की होगा, इत धार्मिक तौर पर भी तकसीम हो गए, इत सियासी तौर पर भी तकसीम हो गए। अकाल तख्त एक है, पर बदकिस्मती जथेदार इस वक्त तीन है। मैं भारत देश भी ऐलान किया, जेड़े दो अपना नाम विड्रा कर लेंगे मैं अपना मस्तक उन्होंने कदमों पर रखांगा, एक रहने दो, ताकि पुरानी परंपरा साड़ी चले, ताकि असी मान नाल कह सकीए असी सब एक आ, बिल्कुल एक आ। लेकिन साड़ी इस एकता नूं, साड़ी इस एक नूं बहुत सट वजी है। भावें साड़ी गल तो एक तो शुरू होंदी है, गुरु ग्रंथ साहब का पहला अक्षर एक है, किसी वक्त खुलासा करांगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक तो आरंभ होंदी है। असी सारी दुनिया नूं इस एक नाल जोड़ना सी, बदकिस्मती असी आप भी एक नहीं रहे। ये बहुत वड्डी गल है। लगता है कोई भी मर्यादा की पालना करन नूं तैयार नहीं, ना शरीरक मर्यादा, ना ईश्वरी मर्यादा, ना गुरु की मर्यादा, अपनी मर्यादा, अपनी मर्यादा। तो जे अपनी मर्यादा चलावांगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, अपनी मर्यादा चलावांगे पंथ फेरू फेरू हो जाएगा, अपनी मर्यादा चलावांगे तो बिखर जावांगे। पंथ की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, ईश्वर की मर्यादा, इसनों फिर मैं थोड़ा जहा खोल सकां, कल आप जी के सामने रखांगा। तो मैं देखता पाया समा अगे चला गया। जिस तरह जमीन के उत्ते सब कुछ मर्यादा दे चल रहा है, राती रुत्ती थित्ती वार, पाउण पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धर्मसाल है जीवां दे धर्म कमाण दी जगह। सब कुछ धर्म दे चल रहा है, रात चल रही है, दिन चल रहा है, दरिया चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, सूरज चंद तारे चल रहे हैं, जमीन धर्म दे चल रही है, मर्यादा दे चल रही है, नियम दे चल रही है। बंदे अगर नहीं चल रहे तो तू नियम दे च नहीं चल रहे, तेरा सब कुछ बेनियम बेमर्यादा। इसनों कल थोड़ा जहा होर अगे तोरांगे, ताकि पता चले असी पहले पड़ाव दे च भी हाँ के नहीं। पंजवां ते सचखंड है, सचखंड वसे निरंकार। असी पहले पड़ाव ते भी पहुंचे हाँ के नहीं। इस मर्यादा नूं किवें जपना है, किवें समारक ते चलना है, जो गुरु नानक कलगीधर पिता ने साढ़े सामने ये मर्यादावां रखियां ने, तुछ बुद्धियां अनुसार एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थोड़े सामने जो है रखता जावांगा। धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सच खंड, सिलसिलावार ये सारिया विचार आप जी के सामने बड़े एकाग्रता नाल, टिकाऊ नाल आपने सरवण किया। सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मुकुचरे शास्त्र खटु पिंग ग्रंथ जाए, अंध लखे बधुरो सुने, जो काल कृपा कराए। सन्मानित सत्संग जीओ, गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ गुरमत मार्ग दे जिहड़े वख वख पड़ाव ने, जिन्हां दा जिक्र धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पहले पातशाह ने अपनी पहली बाणी जपजी साहब विच कीता है, वो मैं आप जी दे सामने विचारां रख रहे हैं। मैं इस भाव नूं मुख रख के कि हर एक नूं ये सूझ होवे, पता चले कि असी किस पड़ाव ते हां, चले भी हाँ कि नहीं, और कितनी दूर तक गया। गुरबाणी दस देंदी है, और गुरबाणी एक एक पड़ाव का बकायदा जिक्र करती है। थोड़ा जहा एक मिनट मैं दोहरा दें। हिंदू धर्म ने दो पड़ाव मने ने, तीसरी मंजिल जिन्हों सनातन मत कहते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ये दो पड़ाव ने। ज्ञान कांड ये प्राप्ति है, ये मंजिल है। ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति। इस्लाम ने तीन पड़ाव मने ने, चौथी मंजिल मनी है शरीयत, तरीकत, मार्फत ते हकीकत। हकीकत दे अखरी अर्थ ने सच्चाई, सच तक पहुँचना। सच मंजिल है, सच खुदा है, सच ईश्वर है। ये पड़ाव ने शरीयत, तरीकत, मार्फत। गुरु नानक देव जी महाराज ने मंजिल का नाम दसिया सच खंड। चार पड़ाव ने, धर्म खंड, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸੇ ਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਹੈ, ਪਵਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਝਰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਉ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਝਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹਾਉ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਉ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਇੱਕ ਪੜਾਓ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਹਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਥਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਹਾਉ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਰੁਕਾਓ ਕਰਕੇ ਸੜਾਂਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਾਉ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਦਬੋ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਰਸ਼ਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਝਗੜਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ।